का था, रूह वही रूह नया।
आज मैं डॉक्टर कमल मुसद्दी आप सबके लिए लाई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी वजू। रोज की तरह आज भी शालिनी ठीक 5 बजने से 5 मिनट पहले अलार्म बजने से पूर्व ही उठ गई थी। एक अजीब सी चिंता उसकी नींद पर हावी रहती थी कि कहीं पति को मॉर्निंग वॉक पर जाने में देर ना हो जाए, बच्चों की कोचिंग ना छूट जाए। इसीलिए कुदरत ने ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अलार्म हमेशा उसके उठने के बाद बजता, और वह सचेत रहती थी कि कहीं अलार्म की आवाज से बच्चों और उनके पापा की नींद खराब ना हो जाए, इसीलिए वह अलार्म बजने से रोक देती थी। वह पति और बच्चों के उठने से आधे घंटे पहले उठती, फिर पति के लिए ग्रीन टी और बच्चों के लिए गुनगुना पानी और दूध की तैयारी कर लेने के बाद उन्हें आहिस्ता से जगाती। आज भी वह ग्रीन टी लेकर पति के बिस्तर के पास पहुंची। उठिए, 5:30 होने वाले हैं, अलसाई सी आवाज में हूँ कहकर वो उठ बैठे। चाय पी, फ्रेश हुए और हाफ पैंट, टी शर्ट, स्पोर्ट शूज पहनकर वॉक पर जाने को तैयार हो गए। पति के बाद उसने बच्चों को मनुहार करके जगाया। उठते ही बेटे ने बेहद नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मा तुम मेरी नींद की दुश्मन क्यों हो? बेटी ने उसका हाथ ही झटक दिया और खींचकर बोली, अभी नहीं उठूंगी। शालिनी की आवाज में तलखी आई तो बेटी उठी और उसकी उपेक्षा करती हुई पांव पटकती बाथरूम में घुस गई। पति सीढ़ियां उतर चुके थे। शालिनी किचन की खिड़की से दूर बिल्डिंग के अहाते में देख रही थी। उसे पता था कि अभी ट्रैक सूट पहने मिस्टर एंड मिसेस बंसल भी निकलेंगे। 110 किलो के बंसल साहब हांफते कांपते से चलेंगे और छरहरे बदन की मिसेस बंसल पोनीटेल हिलाती उसके पति के साथ हो लेंगी। दोनों हंसते बतियाते, कभी जॉगिंग करते, कभी तेज चलते और कभी मिस्टर बंसल को कवर अप देने के लिए बेंच पर बैठकर ठहाके लगाते दिखेंगे। वो इसलिए यह सब जानती थी कि एक दो बार वह भी बच्चों की छुट्टी के दिन उनके साथ गई तो उसकी और मिस्टर बंसल की दशा एक जैसी थी। यह सोचते हुए शालिनी का ध्यान अचानक अपने बेडौल शरीर पर चला गया और सोच उसे अतीत में ले गया। 23 वर्ष की उम्र में विवाह के लिए जब उसका बायोडाटा तैयार किया गया था तो लंबाई 5 फुट 4 इंच, वजन 48 किलो और रंग गोरा था, जिसे देखकर उसके पति का परिवार उस पर लट्टू हो गया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दर्जनों ट्रॉफियां जीतने वाली सुरीले कंठ की शालिनी पर PWD के प्रतिभावान इंजीनियर जैसे दिलो जान से निछावर हो गए थे। वो कहती उसे पूरा करते। कई बार उसकी माँ उन्हें जोरू का गुलाम कहने से नहीं चूकती। हालांकि पारिवारिक दायित्वों में उसने कभी लापरवाही नहीं की थी, फिर भी बेटे की आसक्ति माँ को अखरती थी। 4 वर्ष में उसने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। पति अपनी नौकरी में व्यस्त और वह अपनी संपूर्ण शिक्षा व संस्कार अपने बच्चों को देने में लग गई। बस एक ही स्वप्न, एक ही कर्म और एक ही श्रम उसे शांति देता था कि कैसे पति और बच्चों को तृप्त रखे। इस तृप्ति के ख्याल में वो पति के संतोष के लिए उसकी हर इच्छा का पूरा ध्यान रखती थी कि कहीं उनको किसी भी तरह के उनके सुख में कोई कमी ना होने पाए। इन तमाम व्यस्तताओं में उसका ध्यान ही नहीं गया कि उम्र की परतें और निज की उपेक्षा चर्बी बनकर उसके बदन पर इकट्ठी होती जा रही है। उसके भीतर के कपड़े जब कसने लगते वह एक नंबर और बड़े खरीद लेती। ब्लाउज के हुक नहीं लगते तो दर्जी से और बड़ा बनाने को कहती। धीरे धीरे साड़ी की 9 प्लेट्स की जगह 6 रह गईं। वह उठने में हांफने लगी तो सबने सलाह दी कि खून की जांच करा लो। जांच में उसे थायराइड निकला और फिर शुरू हो गई एक गोली रोज। तमाम कामों की तरह वह गोली भी जिम्मेदारियों का हिस्सा बन गई। अब वह 45 की, पति 50 के, बेटा 20 और बेटी 18 की हो गई थी, मगर मोटापे की वजह से वह अपनी उम्र से कहीं बड़ी दिखने लगी थी। कई बार वो पति को अपनी देह की तरफ वितृष्णा से देखती हुई पाती। पति पत्नी संबंध तो जैसे भूले बिसरे हो गए थे। बच्चे भी कई बार कह चुके थे, मम्मा प्लीज अपना वजन घटाओ, कैसी लगती हो तुम, हमारे दोस्त कहते हैं तुम्हारी मम्मा कितनी मोटी है। वो कभी स्लीवलेस ब्लाउज पहनती तो पति ताना मारते, मुग्धर जैसी भुजाएं मत खोला करो। बेटा प्यार से बाजुओं को पकड़कर कहता, मम्मा सारे विटामिन मिनरल सब तुम्हारी बाहों में इकट्ठे हुए हैं। अपने प्रति पति की आंखों की उपेक्षा, मिसेज बंसल के प्रति उनका आकर्षण और बच्चों की हीन भावना उससे छिपी नहीं थी। कई बार वो प्रयास करती कि सुबह टहलकर अपना वजन घटाए, मगर पति और बच्चों की जिम्मेदारियों के आगे اس کی سوچ پیچھے ہو جاتی۔ بیٹے کا بی ٹیک میں سلیکشن اور بیٹی کی بورڈ کی پریکشا کی تیاری اپنے وشے میں سوچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنی جیب کا سواد تک بھول چکی تھی۔ پھیکی چائے، بنا تیل کا کھانا، آلو چاول، ہر چیز وہ چھوڑ چکی تھی جن کا اسے سروادھک چاو تھا، مگر وزن تو جیسے گھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے تمام ورت اپواس شروع کر دیے، کبھی پھلاہار اور کبھی ایک وقت کھا کر وہ ایک پن دو کاج کرتی کہ اس کا وزن کم ہو جائے گا اور اپواس کا پھل اس کے پتی اور بچوں کو فٹ اور ہٹ رکھے گا۔ مگر وہ کچھ اور ہی رہا تھا، وزن کے ساتھ پتی کی اپیکشا بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن تو وہ بہت آہت ہو گئی جب پتی نے کھل کر کہہ دیا کہ دیکھو مسز بنسل بھی تو تمہاری عمر کی ہیں مگر کتنی مینٹینڈ ہیں۔ اس کا من کیا کہ کہہ دے کہ مسز بنسل اٹھتے ہی نوکر کے ہاتھوں سے چائے لے کر واک پر جاتی ہیں، آنے کے بعد سو جاتی ہیں، بچوں کی ذمہ داری میں دادی جٹی رہتی ہے، ساتھ میں آیا فل ٹائم رہتی ہے، لڑکا اسکول سے دو بار ایسٹیکیٹ ہو چکا ہے، خود کو دیکھو اور اپنے بچوں کو دیکھو، کیا یہ میری محنت اور تپسیا کا پھل نہیں ہے؟ اس کا دل کرتا کہ کہے اس نے اس بیچ کتنا تپ کیا ہے، نہ کبھی اپنی نیند بھر سوئی، نہ اپنی بھوک کھایا، ہمیشہ وہ بنایا جو تم لوگوں کو پسند ہے، تمہارے سونے کے بعد سوئی اور تم سب کے جاگنے سے پہلے جاگی۔ مگر وہ کچھ نہیں بولی، اس نے تو اپنی ماں سے یہی سن رکھا تھا کہ استری صرف دھرتی کی طرح داتا ہوتی ہے، جس پر کدال بھی چلاؤ تو ان دیتی ہے اور گہرے کھود دو تو رتن دیتی ہے۔ وہ شانت ہو گئی، وزن گھٹانے کے پریاس میں کھانا اور کم کرتی جاتی، اپیکشا تناؤ اور آہار کی وسنگتیوں میں وہ بیمار ہو گئی۔ پریوار کی اپیکشا سے وہ انمیسک سی رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس کی انترنگ سہیلی اچانک اس سے ملنے پہنچ گئی۔ اس کی ہاری تھکی دیہ اور اداسین ویوہار دیکھ کر اس نے بڑی آتمیتا سے پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ تو جیسے بھیتر بھرا غبار پھوٹ پڑا۔ وہ اس کے گلے لگ کر صبح اٹھی، تب اس کی سکی نے پراکرتک چکتسا دوارا وزن گھٹائے جانے کی صلاح دی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے شالنی کو کئی پراکرتک چکتسالیوں کے نام بھی نوٹ کروائے۔ سہیلی کے جانے کے بعد اس نے پتی سے بات کی اور دوسرے شہر استھت پراکرتک چکتسالے میں 10 دن کے لیے اپنا کمرہ بک کرا دیا۔ وہاں پہنچی تو پراکرتک رمڑی واتاورن میں اس کا من خوش ہوا۔ چکتسا کے نام پر یوگ کریائیں، مساج اور کئی طرح کے گرم ٹھنڈے اسنان کے ساتھ پیٹ کی پورن صفائی شنکھ پرچھالن کریا دوارا کرائی جاتی تھی۔ توچا کے سوندر کے لیے کئی طرح کی مٹیوں کا سروانگ لیپ لگایا جاتا تھا۔ چکتسا کے مہیلا کچھ میں مریض اور چکتسک سب مہیلائیں تھیں۔ پہلے دن جب وہ بھیتر گئی تو اس نے دیکھا 15 ورش سے لے کر 65-70 تک کی تمام مہیلائیں تھیں، کوئی مہاسوں کے علاج کے لیے تو کوئی وزن گھٹانے کو، کوئی توچا روگ سے پیڑت تو کوئی اوساد سے باہر نکلنے کو۔ اسے بڑا عجیب لگا جب چکتسک نے پہلے دن اس سے کہا، ہمارے من کی پرسنتا کا آدھار ہمارا شریر ہوتا ہے، بیمار شریر، بے ڈول شریر من کو کنٹھت کرتا ہے اور کنٹھائیں تمام سمسیاؤں کو جنم دیتی ہیں، یہاں تک کہ رشتوں کے ٹوٹنے کی جڑ بن جاتی ہیں۔ یدیپی ان کی بات کو کاٹنے کا من نہیں ہوا تھا کہ یدی شریر ہی ہر سمبند کا آدھار ہے تو سمویدناؤں کی اہمیت کیا ہے، مگر وہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے تمام چکتسا پدھتی کو اس نے اپنا لیا۔ چکتسا کچھ میں جب پہلے ہی دن سروانگ مساج کے لیے اس کو نروستر ہونے کو کہا گیا تو کچھ کھن ویسک پکائی، مگر جب اپنے چاروں طرف اس نے سب کو اسی اوستھا میں پایا تو کپڑوں کے ساتھ سنکوچ بھی الکنی پر ٹانگ دیا۔ وہاں کی دنچریا میں صرف 8 گھنٹے کی نیند کے اترکت جو بھی کریا کلاپ تھے سب شریر کی سوچھتا، سوشٹھو اور سوندر ہیتو تھے۔ کوئی کوئی سنتولت بدن کی کم عمر یوتیاں مٹی کے لیپ کے بعد دھوپ میں بیٹھتی تو اجنتا کی مورتی سی دکھتی، اس کا شریر کے پرتی اتپن ہین بھاؤ کچھ کم ہو رہا تھا۔ وہاں اس کے جیسی تمام تھی جو بڑے ادھیکاری، راج نیتا اور ابھیجاتیہ ورگ کی شوبھا تھیں۔ اسے یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ بھی کہیں بے ڈول شریر کے کارن اپیکشا کی شکار ہیں۔ وہ چکتسالے کے نیموں کا کڑائی سے پالن کرتی، انچ انچ تن کو ناپتی۔ ایک عجیب سا جنون اس پر سوار تھا کہ اس کا شریر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے پتی کی آنکھوں میں پھر وہی بھاؤ جگے گا۔ اس ایک اکشا کے آگے اسے جو کی روٹی اور چھاچ بھی امرت لگتا۔ وہ دنوں کی سنکھیا اور دیہ کے آکار کے اترکت کچھ نہیں سوچتی، بس کلپنا کرتی کہ جب گھر واپس جائے گی تو اس کی دمکتی توچا اور گھٹے وزن کو دیکھ کر پتی اور بچے اس کا گرم جوشی سے سواگت کریں گے۔ یہ خیال اسے رومانچت کرتا۔ آج 7واں دن تھا، اس کا لگ بھگ 3 کلو وزن کم ہو گیا تھا۔ وہ خود کو تھوڑا چست بھی انبھو کر رہی تھی۔ کافی دیر سے تیز تیز واک کر کے وہ پسینے پسینے ہو چکی تھی۔ वहीं एक बेंच पर बैठ गई। उसने देखा सामने से बेहद खूबसूरत गोरी चिट्टी लंबे काले बाल और तकरीबन 48 किलो वजन की तराशी हुई महिला आ रही थी। उसके पास आकर वह रुक गई। उसका सीधा सवाल था, यहाँ किचन कहाँ है, मुझे भूख लगी है। उसने जवाब दिया, अभी आधा घंटा बाकी है, खाना 6 बजे से 7 बजे तक ही मिलता है। आप क्या आज ही आई हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ से आई हैं? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे सवालों के जवाब में पता चला कि उसे नींद न आने की बीमारी है, इसलिए उसे प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी। अब उसका जिज्ञासु मन उसके विषय में सब कुछ जानने को आतुर हो चुका था। कुछ देर के संवाद के पश्चात आत्मीयता के तार न जाने कैसे जुड़े कि चिकित्सालय के नियमों के विपरीत वो देर रात तक बतियाती रही। यह संयोग ही था कि उसे कमरा भी उसके बगल का ही मिल गया था। उसका नाम रजनी था। वह एक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षिका थी, एक मध्यम श्रेणी परिवार की बेटी थी। उसका 19 वर्ष की उम्र में एक सरकारी क्लर्क के साथ विवाह हुआ। पति बेहद सुलझे विचारों और प्रगतिशील सोच के थे, यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चों का जन्म भी सरकारी अस्पताल में ही हुआ था। आर्थिक स्थिति सामान्य थी तो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। प्रखर बुद्धि पति ने अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और किसी फिल्मी हस्ती की तरह देखते देखते वे 400 करोड़ के आसामी बन गए। वक्त की गति के साथ बच्चे सुख सुविधाओं में बड़े होने लगे। पति तो अपनी नौकरी छोड़ चुके थे, उस पर भी नौकरी छोड़ने का दबाव था, मगर पता नहीं भीतर क्या भाव था कि वे नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब वे बहुत बड़े बंगले में रहती, महंगी कार से विद्यालय जाती, बच्चे महंगे पब्लिक स्कूलों में जाने लगे। साल में 2 बार पूरा परिवार विदेश यात्रा करता। पति ने अपने सभी भाई बहन और परिजनों को अपने ही व्यवसाय में लगा लिया। लक्ष्मी बरसी तो छप्पड़ फाड़ के। विदेश में भी व्यवसाय फैला तो पति का एक पैर देश और दूसरा विदेश में रहने लगा। ये सब बताते समय उसका चेहरा चमक रहा था कि अचानक जैसे सूरज को बादलों ने ढक लिया। फिर एक दिन उन्होंने एक परमानेंट सेक्रेटरी यूरोप के दफ्तर में रखने को कहा। मैं निहितार्थ नहीं समझ सकी। अपनी नौकरी और बच्चों के संसार में खोई मैं पति की पोजीशन से बढ़ती जरूरतों को पहचान ही नहीं पाई, और वही हुआ जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके चेहरे पर अचानक एक उदासी की कालिमा बिखरी। वह बोलते बोलते रुक गई। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई थी तो मैंने उसके कंधे पर बहुत कोमल स्पर्श करते हुए कहा। फिर उसने सेक्रेटरी के विज्ञापन की जगह अपने विवाह का विज्ञापन देकर अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली। सारे परिवार के मुंह में वो पहले से इतना पैसा भर चुके थे कि उसके विवाह के विरोध में बोलने वाला कोई नहीं था। पति का आग्रह था, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूं, मगर विदेश में वो दूसरी स्त्री उसकी पत्नी है। मेरे जमीर ने स्वीकार नहीं किया और मैंने उनसे तलाक ले लिया। तलाक लिए हुए 7 साल हो गए हैं, मगर आज भी एक उम्मीद सी रहती है कि वो लौट आएंगे। मैं स्तब्ध थी, उसके जलते बुझते चेहरे को देख रही थी। उसके बिखरते जज्बातों को संबल देने के लिए मैंने कसकर उसकी हथेली अपनी हथेली में दबा रखी थी। उसने खुद को समेटा और बोलने लगी, सोचती थी कि शायद शादीशुदा बच्चे एक पत्नी की अहमियत को और जज्बात को समझेंगे, मगर सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब बच्चे मेरे दर्द को महसूसने के बजाय धिक्कारते हैं कि तुम्हें उन्हें छोड़ना था तो छोड़ देती, मगर हमारा हक क्यों छीना? तुम्हें बिजनेस मकान सब अपने नाम करा लेना चाहिए था। धीरे धीरे बच्चों का झुकाव पिता की तरफ बढ़ता गया। उसने दोनों को अपने व्यवसाय में लगा लिया, दोनों की शादी भी उनकी मर्जी से कर दी, दोनों यूरोप में सेटल हो गए। बच्चों को माँ नहीं धन चाहिए था, जो उन्हें पिता से ही मिल सकता था। पिता को अपनी पोजीशन पैसा बढ़ते ही पत्नी आउटडेटेड लगने लगी और वो नए प्यार की तलाश में निकल गए। वो कह रही थी और पत्ते सी कांप रही थी। अचानक वह उससे लिपट कर जोर जोर से रो पड़ी। रोते रोते बोल रही थी, काश हम गरीब होते तो वो मुझे यूं अकेला न छोड़ते। काश उनके पास इतनी दौलत न होती कि बेटे माँ के दर्द को ना समझकर पिता की दौलत की चमक में उनके अपराध को अनदेखा कर देते। दोनों बेटे कहते हैं, क्या हो गया अगर शादी कर ली तो? तुम्हें घर से तो नहीं निकाला था ना, एडजस्ट कर लेती। बच्चों की दलील मुझे अपराध बोध से भर देती है। कभी कभी मैं भी बच्चों ही की तरह सोचने लगती हूँ कि क्या हो जाता अगर मैं एडजस्ट कर लेती तो, सब कुछ सामान्य रहता। फिर मुझे लगता कैसे सामान्य रहता जब मेरा वजूद ही खत्म हो जाता। जानती हो जिस दिन हमारा तलाक होना था उस रात उसने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे सीने में मुंह छिपाकर रोया। मुझे कई बार लगा कि वो कहेगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, पर तुमसे दूर नहीं जा सकता। मगर कोर्ट में जब मैंने सगाई वाली रिंग भी उसे वापस की तो उसने बेशर्मी से ले ली। वो हुक मार मार कर रो रही थी और मैं उसकी पीठ सहलाती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर हम समर्पित पत्नियों को भी जीवन में इतनी उपेक्षा, इतना तिरस्कार क्यों सहना पड़ता है। वो अपनी बेडौल देह को संतुलित करने यहाँ आई है, मगर ये तो एकदम तराशा हुआ बदन लेकर भी दर्द के समंदर में डूबी है। तभी उसके कानों में गूंजा, तू एडजस्ट कर लेती, मगर फिर मेरा अपना वजूद क्या रह जाता। वाक्य पर मेरी सोच ठहर गई। उसे लगा कि कर्तव्य या समर्पण की हद वहीं समाप्त हो जानी चाहिए जहां अपना वजूद खोने लगे। अपनी जिंदगी में पलटकर उसने देखा तो उसे लगा कि वो भी तो अपने वजूद की अनदेखी कर रही है। बहुत जरूरी होता है कि किसी से प्यार और सम्मान पाने के लिए हम पहले खुद से भी प्यार करना सीखें। रजनी की बातचीत से उसकी सोच ने एक नई दिशा ले ली। उसका पति बच्चों के प्रति समर्पण के साथ जैसे अचानक स्वाभिमान जाग गया। उसने रात बीतने का इंतजार किया और पौ फटते ही टैक्सी लेकर घर का रुख किया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज रहे थे। उसे 3 दिन पहले आया देखकर सब चौंक गए। बच्चे बोले, मम्मा आप थोड़े दुबले लग रहे हो, थोड़ा और रह लेते। पति ने गहरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और कोई टिप्पणी किए बिना मुंह फेर लिया। बिना किसी की परवाह किए वो बाथरूम में घुस गई, नहाई और फिर बिस्तर पर चली गई और सफर की थकान से गहरी नींद में सो गई। सुबह नियत समय पर अलार्म बजा। वह अलार्म की आवाज को अनसुना करके लेटी रही। उसने देखा पहले पति फिर दोनों बच्चे आकर उसके बिस्तर के पास खड़े हो गए। बेटा बोला, मम्मा उठो। बेटी ने भी माँ से उठ जाने को कहा, मगर फिर भी वह वैसे ही लेटी रही। फिर पति की थोड़ी रूखी आवाज में यह सुनकर कि क्या बात है, आज बच्चों को पढ़ने नहीं भेजना और मेरी चाय। शालिनी ने पति को पूरी आंखें खोलकर देखा, फिर ये कहते हुए कि प्लीज अपने कुछ काम खुद भी कर लिया करो, मुझे सोने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कहकर करवट बदल ली।